أقلي أنبياء كرام وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. اور یاد کرو اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کو، یہ سب صابروں میں سے تھے. کیا کیا ہم نے؟ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے داخل کیا ان کو اپنی خاص رحمت میں، یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے. یہاں آپ دیکھیے کہ دو لوگ ہیں، اسماعیل اور ادریس، ان کا تذکرہ تو پیچھے بھی ہوا. اسماعیل علیہ السلام کا تو بہت ہی تفصیل سے تذکرہ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہونے کے ناطے سے. ادریس علیہ السلام کون تھے؟ یہ ابتدائی دور کے نبی تھے. بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بالکل قریب کے دور کے نبیوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو رکھا، اور یہ دونوں نبی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے. ان کی جو ایک خاص چیز ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ میری جان زمین پہ نہ نکلے، میں آسمان پہ مرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو فرشتہ ان کو اٹھا کر آسمان پہ لے گیا، اور جب یہ آسمان میں چلے گئے تو وہاں ملک الموت نے ان کی جان لی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کا فرشتہ آسمانوں پہ بھی پہنچ جاتا ہے، ہر جگہ وہ پہنچ کے اب کسی کی بھی جان جو ہے وہ لے سکتا ہے. اب رہ گئی بات ذوالکفل کی. ذوالکفل کون ہے؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا یعنی ہمیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں دو جگہ پہ ہے، ایک یہاں اور ایک اور مقام پہ ہم پڑھیں گے. ان کے بارے میں مختلف رائے ہیں. پہلی رائے کیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے، اور کئی نبیوں کے دو نام ہیں، جیسے حضرت یونس کو ذوالنون کہا جا رہا ہے اگلے ہی حصے میں آیت کے، حضرت عیسیٰ کو مسیح بھی کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ دو الگ پیغمبر تھے، حزقیل ان کا نام تھا لیکن ذوالکفل ان کا لقب تھا. اگر لفظ ذوالکفل کو دیکھیں تو زی زو والے کو کہتے ہیں، کفل عربی زبان میں حصے کو کہتے ہیں، نصیب کا حصہ. تو اس کا اردو میں معنی کیا بنتا ہے؟ نصیب والا، خوش نصیب کے معنوں میں. بعض کہتے ہیں کہ حضرت حزقیل نبی جب بنے تو بخت نصر کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، یروشلم تباہ ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس وقت عراق میں اسرائیلیوں کے لیے ایک نئی آبادی قائم ہوئی جس کا نام تل عبید تھا، یہاں قیدی رکھے گئے. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل کو پیغمبر بنا کر بھیجا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے انہوں نے ڈرایا. تقریباً 22 سال تک تبلیغ کی، 30 سال کی عمر میں نبی بنے، اور نبوت کے 9ویں سال ان کی بیوی جس کا نام منظور نظر تھا اس کا انتقال ہوا. ان کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والوں کو یہ اللہ کی باتیں بتاتے، یعنی اپنے ذاتی دکھ بھول کر اللہ کی بات بتاتے رہے. لہٰذا ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا، اور ان کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے. اگر آپ پڑھیں تو واقعی واقعات ایسے ہیں کہ اپنے عمل کے لیے، یعنی جیسے ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں سے ہمیں اپنے لیے بہت ساری باتیں ملتی ہیں، اسی طرح ان کی زندگی میں سے ہمیں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں جس کے لیے واقعی اگر دیکھا جائے تو انسان عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کافی سمجھے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ضروری نہیں کہ یہ نبی بھی ہوں، کوئی نیک بزرگ تھے، لیکن ان کی شان اس لیے زیادہ ہے کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے نام میں نقل کیا. راتوں کو جاگتے، دوپہر کو کیلولہ کرتے تھے، اور ایسے وقت میں بعض دفعہ شیطان ان کو بہکانے کے لیے بھی آتا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ پھر معاملہ اچھے طریقے سے کرتے تھے. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے آپ کو ان کے واقعات سنا دیے جائیں گے. ایک روایت میں مسند احمد کی جس میں ذوالکفل کی بجائے الکفل کا نام بھی آتا ہے، جو ہم معروف شخص جانتے ہیں بنی اسرائیل کا تھا، اور اس نے توبہ کی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی شخص بھی ہے جس کو ایک عورت نے جب اللہ کا خوف دلایا تو عین اس حالت میں جب وہ بالکل اس کے اوپر قابو پا رہا تھا اس نے اس کو آزاد کر دیا، اور ساتھ ساتھ وہ پیسے بھی اس کو دے دیے جو اس کے لیے مقرر کیے تھے. تو بہرحال بعض نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے. واللہ عالم، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں سے ہم عمل کی باتیں لے سکتے ہیں. جو ایوب جیسا صبر کرے گا اللہ کی مدد ویسی آئے گی، اور جو باقی انبیاء کرام کی طرح اپنی زندگی کو لے گا وہی انشاءاللہ کامیاب ہوگا. ان کی زندگی کے جب میں واقعات پڑھ رہی تھی تو ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، اور وہ کیا کہ با مقصد لوگوں کے غم بھی با مقصد ہوتے ہیں اور ان کی خوشیاں بھی با مقصد ہوتی ہیں. وہ ایک لمحہ نہیں ضائع کرتا، وہ کسی خوشی کے موقع پہ جائے या किसी गम के मौके पे जाए, वो एक लम्हा जाया नहीं करता, वो मौका ढूंढता है कि कहाँ किसको फायदा हो जाए। जैसे सूरज एक तरफ से गुरूब होता है तो दूसरी तरफ तुलू हो जाता है ना, एक बामकसद इंसान को भी इसी तरह होना चाहिए कि वो जहाँ एक जगह जिस रंग में दिखता है तो वो दूसरी जगह भी वैसा हो। उसके कॉल और फेल में तजाद नहीं होता। वो एक जगह अगर मोहब्बतों का पयाम्बर है तो दूसरी जगह वो नफरतों के बीच नहीं फैलाता। और कायनात से हमें ये चीज़ बहुत दिखती है कि वक्त बहुत मुख्तसर है, इसकी कदर कर लो। हमारा हाल क्या, कभी खुशी के नाम पे दिन छोड़ देते हैं, कभी गम के नाम पे, कभी डिप्रेशन के नाम पे। हमारे लिए तो एक मंगनी और सालगिरह ही बहुत है काम छोड़ने के लिए। जो मकसद के लिए जिएगा, अल्लाह ताला उस बंदे को मिशले राह बनाकर आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा रोल मॉडल बना देंगे कि लोग उनके नाम ले लेकर काम करेंगे। फिर यहाँ एक छोटी सी बात बहुत ही प्यारी है कि वादखल ना हम फी रहमतीना, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये साबिर थे और हमने इनको अपनी रहमत में दाखिल किया। अगर नबियों की ज़िंदगी देखें तो कोई खूबसूरत ज़िंदगी नहीं लगती। यहाँ रहमत क्या है, इंजाम बिल खैर हुआ। सारी ज़िंदगी बीमार रहे, इंजाम अच्छा हो गया। मछली के पेट में रहे, इंजाम अच्छा हो गया। गम आए, इंजाम अच्छा हो गया। तो अल्लाह की रहमत क्या है कि बंदे का इंजाम अच्छा हो जाए। दुआ किया करें, अल्लाह के नबी ने इसीलिए दुआ सिखाई कि अल्लाह मेरा इंजाम बखैर करना, मेरे आमाल का इंजाम बेहतर हो। और यहाँ रहमत से मुराद फिर नबूवत भी है। इसके बाद अब अल्लाह ताला ने एक और बड़े प्यारे नबी का तذکرہ किया। वज़न्नून इज़ ज़हब मुगादिबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैही फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाती अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। और याद करो ज़ुन्नून को, या ज़न्नून को, जब वो चल दिया गज़बनाक होकर और ये ख्याल किया कि हम इस पर कोई गिरफ्त ना करेंगे। फिर इसने पुकारा तह दर तह अंधेरों में कि कोई माबूद नहीं तेरे सिवा, पाक है तू, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। क्या नतीजा निकला इस पुकार का, फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम्मी, बस हमने इनकी पुकार को कबूल फरमा लिया और निजात बख्शी इनको गमों अंधों से। वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, और हम इसी तरह से निजात दिया करते हैं ईमान वालों को। दो आयतों में तذکرہ है हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम का। ज़न्नून कहा, नून अरबी ज़ुबान में मछली को भी कहते हैं, ख़ास किस्म की मछली है, गालिबन व्हेल मछली होगी जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे थे। इसी तरह सूरत नून में इनको साहिबल हूत भी कहा गया। तो अरबी ज़ुबान में मछली के लिए दो नाम आपको समझ आ गए, नून और हूत। जैसे डिफरेंट मछलियाँ हैं ना, जैसे स्टिंगरे है, स्टार फिश है, फिश फिले है, रॉ होती है, तो साइज़ और उन तो उनकी किस्म के अतबार से जैसे मछलियाँ फ़र्क हैं, इसी तरह अरबी ज़ुबान के इनके नाम भी फ़र्क हैं। तो इनका तذکرہ पीछे सूरत यूनुस में तो आ गया था कि अल्लाह ताला ने इनको नैनवा नाम की बस्ती में नबी बनाकर भेजा। बहुत समझाया बुझाया कौम को, लेकिन कौम की हठ धर्मी ख़त्म ना हुई। इतना ज़्यादा जब तंग कर चुके, मायूस हो गए, लगा इनको कि अब इनकी मोहलत की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, अल्लाह ताला ने इनके अज़ाब का फ़ैसला कर दिया है। और आता है कि अल्लाह ताला ने भी कह दिया था कि इस कौम पे अज़ाब आएगा, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से एक इज्तिहादी गलती हुई। वो क्या थी कि कौम पर अज़ाब के आने की खबर सुनकर ये समझ गए कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। हालांकि नबी उस वक़्त तक नहीं निकलते जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। इसको आप समझ लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से। जब मदीना हिजरत का हुक्म हुआ तो सारे सहाबा इकराम जाने लगे, काफ़ी लोग चले गए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम उस वक़्त तक ना निकले जब तक के आपको हुक्म नहीं मिला। और बिलआख़िर जब आपको इजाज़त मिली और साथ हज़रत अबू बकर का नाम आया, तो वो वाक़िया आप सीरत में सुन ही चुके होंगे कि कितने ही मोहब्बत से फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ जो थे वहाँ गए। तो नबी किसी बस्ती को अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकता। कौम को ये कहकर कि 3 दिन के अंदर तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा, बस्ती से निकल गए। और इनको लगा कि अजाब आने वाला है। बाज़ रिवायतों में यहाँ तक आता है कि अजाब के असरात भी शुरू हो चुके थे और घने बादल होने लगे। अब जब ये वहां से निकले, पीछे कौम के साथ क्या हुआ ये तो हमने पीछे देख ही लिया था। उन्होंने बुत तोड़े, अपने जानवरों को, बच्चों को पकड़ा, खुले मैदानों में गए, गिरियाजारी की, आहोजारी की, और इतना रोए, सच्चे दिल से उन्होंने तौबा की, अल्लाह ताला ने अजाब को टाल दिया। ये किस्सा सूरज यूनुस में डिटेल से आ चुका है। अब इनके साथ क्या हुआ इसका तस्करा इधर है। हज़रत यूनुस इस इंतज़ार में थे कि कौम पर अजाब आ चुका होगा, हलाक हो गई होगी। शैतान ने आके इनको ख़बर दी, बाज़ रिवायतों में आता है कि कोई अजाब नहीं आया। अब आप सोचिए कि ये कहना कि अजाब आया था लेकिन कौम की आहोजारी से टल गया, ये एक और मानी देता है। ये कहना कि अजाब आया नहीं, इससे इनको ये ख्याल आ गया कि अल्लाह ने मुझे झूठा कर दिया, कि मेरी बात झूठी पड़ गई है। अब इस शर्म के मारे कि मैं झूठा नबी बन के जाऊँ, इन्होंने पीछे जाने की बजाय आगे जाना। बाज़ रिवायतों में आता है कि इनकी कौम में ये आदत थी कि किसी का झूठा होना अगर साबित हो जाए तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। ये तफसीर मजहरी की रिवायत है। तो इनको अपनी जान का ख़तरा हुआ तो इन्होंने वापस जाने की बजाय आगे जाना शुरू किया। आगे रास्ते में गए तो एक समंदर था या दरिया था, कश्ती में बैठे। कश्ती जब बीच समंदर में आई तो एक गर्दाब में फंस गई। अब इस दौर में फिर यही होता था कि कश्ती कब गर्दाब में फंसती थी, जब उसमें कोई गुलाम भागा हुआ बैठा होता था, क्योंकि गुलाम मालिक की मलकियत होता है, जैसे कोई कैदी जेल से छूट जाए। तो लोगों को लगा कि हमारी कश्ती में कोई ऐसा शख्स है जो अपने मालिक को बताए हुए बगैर आ गया। कुरा डालते हैं, कहते हैं कि इनको ही कहा गया कि आप का कुरे की जो चीज़ है उसको उठाएं। 3 दफ़ा जब कुरा उठाया तो इनका ही नाम निकला। लोगों को तो समझ ना आई, लेकिन इनको समझ आ गई कि मैं अल्लाह का हुक्म सुनने से पहले ही बस्ती छोड़ आया हूँ, लिहाजा इनको भी दरिया में फेंका। आगे हम पढ़ेंगे, फसा अहम फ़कान मिनल मुदगदीन, के कुरा डाला और वो उसमें से मतलब कमज़ोर लोगों में हुए। लोगों ने इनके कपड़े उतारे, इनको दरिया में फेंका या ये खुद कूद गए। अल्लाह ताला ने कश्ती के बिल्कुल साथ ही एक बड़ी सी मछली को डाल दिया और कश्ती को कहा कि यूनस की हड्डी और इसका गोश्त तुझ पे हराम है, ये तेरे पास अमानतन आ रहा है, बस तू अपना मुंह खोल लेना। कश्ती में से निकले और एक और कश्ती यानी मछली के पेट में चले गए। जब वहाँ अंदर गए तो उनको एहसास हुआ कि मैं तो किसी ऐसी जगह में आ गया हूँ जहाँ मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। तो वहाँ फिर उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा, और क्या पुकार थी जिसका तذکرہ यहाँ है, जिसको हमारी ज़ुबान में आयते करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर आप इन अल्फाज को देखें तो बिल्कुल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ की तरह मांगा यहाँ भी कुछ नहीं है। क्या कहा? अपने जुल्म का इकरार कि अल्लाह जो तकलीफ़ भी आई है ये मेरे ही किसी गुनाह का नतीजा है, और साथ ही साथ अल्लाह की बड़ाई की बात कि मुझे इस बात का यकीन है कि जो तू चाहेगा वही होगा। और इस दुआ के पढ़ने की देर थी कि रिवायात में आता है कि अर्श पे जो फरिश्ते हैं उन्होंने आवाज़ को सुन के अल्लाह ताला से कहा कि ये आवाज़ जानी पहचानी है। फी ज़ुलुमातिन, 3 अंधेरों में थे, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, गम का अंधेरा, लेकिन वहाँ से यूनुस अलैहिस्सलाम पुकारते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। तो इससे क्या पता चलता है कि फरिश्तों ने जब पहचाना, कहा हाँ ये तो वही यूनुस है जो हमें खुशी के दिनों में भी पुकारा करता था। इसी बात पे फिर ये रिवायत आती है कि जो बंदा खुशियों में अल्लाह को ज़्यादा पुकारता है ना, याद रखता है, गमों में भी, दुखों में और बीमारियों में भी अल्लाह सुबहान तआला उसकी ज़्यादा सुन लेते हैं। अब यहाँ पे इनकी बातें हो गई, यहाँ लफ्ज़ जो है मुगादिबा, मुगादिब मुफाइला से मुबालगे की बात है, बहुत नाराज़ होकर गया, और ज़न अल्लन नक़दिरा अलैहि, इससे क्या मतलब है कि उनको ये ख्याल था कि अब अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर जाएंगे। बास कहते हैं कदर यहाँ तंगी के मानों में भी है, कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से पकड़ा, लेकिन उनका गुमान था कि हम नहीं पकड़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें तो एक तरफ कर दीजिए, जो भी उनके साथ हुआ इस पे हम बात थोड़ी पीछे कर भी चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे आयत करीमे पे। हमारे यहाँ आयत करीमा पढ़ा जाना इसका रिवाज भी है और शौक भी है, और हकीकत है कि ये बहुत प्यारा कलम है। अगर हम इस आयत को यहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के टेक्स्ट में देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस्ताद हैं और वो हमें ये कलमा सिखा रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट के साथ अगर आप देखें तो हज़रत यूनुस ने इसको पढ़ा। पहली बात है कि हम भी इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुख के वक्त में पढ़ा ना, किसी मुश्किल में गए थे तो मुश्किल में इसको पढ़ना चाहिए। दो बातें तो साबित हो गई, यूनुस ने पढ़ा, हम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि कज़ालिका नुनजिल मोमिनीन। अब सिर्फ एक छोटी सी बात है जिसको हमें हल करना है, और वो क्या कि कैसे पढ़ा। जिस तरह उस्ताद काम करता है उसी तरह शागिर्दों को करना चाहिए ना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कैसे पढ़ा, अकेले पढ़ा कि बहुत सारे लोगों के साथ पढ़ा? अकेले पढ़ा, तो हमें भी अकेले पढ़ना है। दूसरी बात है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, उन्होंने कितनी दफ़ा पढ़ा, क्या गिन के पढ़ा, बग़ैर गिन के पढ़ा? हमारे यहाँ आजकल अमूमन इसको गुठलियों पे पढ़ा जाता है, बादामों पे कुछ लोग पढ़ते हैं या किसी और पे पढ़ते होंगे। क्या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जाते हुए इनमें से कोई चीज़ साथ लेके गए थे? ज़्यादा से ज़्यादा भी, बिलफर्ज़ ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लगा लें तो पढ़ा होगा, तो उंगलियों पे पढ़ा होगा ना, पास उंगलियाँ ही होती हैं ना। तो अब उस्ताद पढ़े एक तरीके से, शागिर्द पढ़ने लग जाए उसको गुठलियों पे, बात नहीं बनती ना, तरीका भी हमारा थोड़ा सा फ़र्क हुआ। अगली बात है कि कितना पढ़ा था। आप कहते हैं कि हम तो यूनुस अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझते हुए इसको पढ़ते हैं, और वाकई पढ़ना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन कितनी दफ़ा पढ़ा? आज हमारे यहाँ मारूफ बात है 1.25 लाख दफ़ा पढ़ो। मुझे आप सब में से जो भी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होने का दावा भी करे, वो बैठ के अपनी इन 5 उंगलियों की पोरों पे 1.25 लाख पढ़ के दिखाए, यानी गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15 बनते हैं जब आप एक दफ़ा अपना एक हाथ गिन लेते हैं। अब दूसरी तस्बीह इधर भी कर लें, 15 इधर, 30 दफ़ा होते हैं ना पोरे। कोई कापी पेन है क्या, आप लिख लें, चले एक दफ़ा पढ़ के रख लिया होगा उन्होंने 30 दफ़ा, फिर दोबारा ये उंगलियाँ शुरू की होंगी 15, फिर आप 15 का पहाड़ा कब तक पढ़ेंगे कि 1.25 लाख होगा, नंबर एक। दूसरी चीज़ लाइए कि रिवायात में जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन लगते हैं ना हज़रत यूनुस के मछली के पेट में, वो 3 है, बस ने 7 की भी बात की। कोई कितनी देर पढ़े कि 1.25 लाख हो जाता है पूरा इस वक्त में, पॉसिबल है? कोई गिन सकता है? कोई इसको इतनी दफ़ा याद रख सकता है? बस ये छोटी सी बात है। अल्लाह ना करे कि आप पे कोई मुश्किल आए, पहली बात, इंतज़ार मत करें मुश्किलात का, वैसे ही पढ़ें। लेकिन अगर कोई आ जाती है, आप पढ़ें, वाकई पढ़ें, इतने ही लफ्ज़ पढ़ें, पूरी आयत का एक हिस्सा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। आप इस चीज़ को ज़रा इमेजिन करें एक और एंगल से, ज़रा आपको इसमें एक दिलचस्प चीज़ दिखेगी कि इसको पढ़ने में कितने सेकंड लगे। आराम से भी पढ़ूँ तो ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, 5 सेकंड लगे तकरीबन, कोई आराम से भी पढ़े। अब आप इसको सोचें कि पूरे कुरान पाक की आयतें कितनी हैं, 6,666, कुछ इसे ऊपर है कुछ नीचे हैं, और उसमें छोटी छोटी आयतें भी हैं, जैसे आप सूरह रहमान में पढ़ते मुदहामतान, ये एक आयत है, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, 1 सेकंड में पढ़ा जाता है एक लफ्ज़। कुरान पूरा कोई पढ़ ले तो 6,666 आयतें, और आप सिर्फ इस एक कलमे को 1.25 लाख पढ़ते हैं, आप कितने कुरानों से ज़्यादा पढ़ रहे हैं? और ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन कहने में कुरान की एक आयत पढ़ने से ज़्यादा वक्त लगता है, क्या तकल्लुफ नहीं है? कहाँ से आया? चले आप कहते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम ने तो नहीं पढ़ा होगा, अल्लाह के नबी ने बाद में पढ़ के बताया होगा, ये भी हमारे लिए हुज्जत है कि कुरान में तो बस बता दिया कि ये पढ़ो, तरीका अल्लाह के नबी सल्लम ने बताया हो। ग़ज़वा बदर हुई और आपने 313 को बिठा दिया कि चलो बैठो, तस्बीहें पकड़ो और पढ़ो इसको 1.25 लाख बार, दुश्मन से फतह होगी। अब थोड़ी सीरत तो आप पढ़ ही चुके हैं ना कुरान के साथ साथ। ग़ज़वा उहद में आपने सहाबा से कहा कि ये दर्रा छोड़ चुके हो, भाग गए हो, चलो सारे ऊंची ऊंची ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करो, हुआ? ग़ज़वा खंदक आ गई, सारे जमा हो गए कि सारी फौजें जमा हो गई, अल्लाह के नबी करें क्या? हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि भाई ये खंदक खोद लेते हैं और उससे हिफा करते हैं। कोई एक रिवायत बता दें कि इतना बड़ा सदमा आ गया मुसलमानों पे कि अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, पहले बैठ के 1.25 लाख ख़त्म पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ ये रिवायतें हमारी ख़ानदानी रिवायतें हैं। जिसकी असल पाकिस्तान और इंडिया से बाहर भी नहीं जाती। कुछ बिदात ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं। ये बिदत पाकिस्तान, इंडिया और मेरा ख्याल है कि उसके साथ थोड़ी सी बांग्लादेश में होगी। आप किसी बाहर तुनसिया के या ईरान के, इराक के किसी शख्स से पूछे, उनमें ये बिदत नहीं होगी। बस छोटी सी बात है। फिर आप देखिए, असल चीज़ कैफियत है ना। मैंने एक चीज़ जो फील की है कि जब लोग पढ़ते हैं ना, तो तस्बीह या दाने तो वो यूँ डाल रहे होते हैं, ठीक, यूँ इस तरह हाथ से जाते हैं। आप पढ़ ही नहीं सकते पूरा। आप देखिए, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, फिर दाना गिरेगा। अब कभी आप जाए ना, तो आप खामोशी से ऑब्जर्व करें कि उतनी देर में वो तीन चार दाने डाल चुके होते हैं जितनी दफ़ा ये पढ़ा जाता है। फिर एक और एंगल ज़रा इसका देखिए, आयत को गौर से देखिएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु, ये लफ्ज़ कुंतु को क्या कहेंगे आप उर्दू में? तर्जमा करें कुंतु का और कुंता कह दें, क्या मानी है? अल्लाह कह रहा है इन्नी कुंतु, तुम कहो कि मैं जालिम हूँ, और अगर आप इसको कुंता कह देंगे तो हम कह रहे हैं अल्लाह तू जालिम है। अब अगर सही ना पढ़ा जाए, जल्दी में गलत पढ़ा गया, पहले हम अल्लाह को कहते हैं तू जालिम है, फिर कहते हैं कि ये बड़ा जलाली कलमा है, इसलिए पानी के अंदर तस्बीह रख के पढ़ते हैं कि ये ठंडा करें। और बिदत ये भी हो सकती है कि लोग मछली के पेट में जाके पढ़ें। अगर आपको बिल्कुल सही वही हालात बनाने हैं, तो फिर तो मछली के पेट में जाना पड़ेगा ना। तो लिहाजा इन बातों में ना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आना चाहिए, ना ये कोई बहुत ऐसी बातें होती हैं जिसमें हराम और हलाल की बात है। मैं अपने दिल को इन बातों में बहुत खुला पाती हूँ, लेकिन कम से कम जो तालिब इल्म है, जो कुरान सीख रहे हैं, आपको तो सही पता हो। अब मिसाल है, आपके ख़ानदान में, दोस्तों में कोई पढ़ता है, मत कुफर के फतवे दें। आप मुफ्तिया नहीं हैं ना, आप कोई किसी के ऊपर कोई टॉन्ट करने वाली हैं। अपने अमल के लिए लें। लॉजिक से अगर आपको ये मेरी बात समझ आ गई है ना, तो आप दूसरों को भी करते हैं। लेकिन अब इस बात को आप यूं ना करें कि आपको कोई फ़ोन करता है कि आप आज मेरे घर ख़त्म कुरान है और आप आएँ, या बिलफर्ज आप कहीं पहुँच जाए, लोग पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ जाते ही सर धाड़ मुँह फाड़ बात करना शुरू करें। कभी ना करें। पहले इसकी असल तो बताएं कि ला इलाहा इल्ला अंता, तू है अल्लाह की ज़ात जो सब कुछ करता है। सुबहानका, ये जो तकलीफ़ मुझ पे आई है, जो मुकदमा मेरे ऊपर पड़ा है, तू पाक है इससे, तेरा इसमें कोई कसूर नहीं। इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, असल कैफियत सामने रखते हुए जब बात करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वकज़ालिका नुनजिल मोमिनीन, इसी तरह अल्लाह मोमिनों को निजात देते हैं। यकीन करें, लोगों को आप सिर्फ ये पूछें ना कि ये कहाँ है कुरान में, तो कोई बहुत भी बोलेगा ना, ये कहेगा सूरह यूनुस में, क्योंकि हज़रत यूनुस के नाम से ही आता है। बहुत कम को पता कि ये सूरह अंबिया में है। तो बहरहाल, अल्लाह ताला हमें और उनको सबको हिदायत दे। तिलावत सुन लेते हैं यहाँ तक। अगला भी किस्सा बहुत ही खूबसूरत है नबियों में से, तो यहाँ तक तिलावत सुनते हैं।
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين